आज का प्रातः क्लास है अठारह तीन छियासठ शुक्रवार को चौथे पेज की आज में बात चल रही थी सोजरा माना ही स्वर्ग स्थापन करने आए हैं। तो देखो ये स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं और तुम बच्चे बैठकर पढ़ते हो, दैवी गुण धारण करने के लिए, दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो ये बात भारतवासियों को मालूम होनी चाहिए ना। शिव जयंती मनाई जाती है, उसके बाद क्या होगा? अरे भाई, शिव जयंती के बाद तो जरूर सतयुग जयंती होगी। शिव माना ही कल्याणकारी, तो कल्याणकारी युग होगा ना। सत्य का युग है ही सतयुग कल्याणकारी, तो जरूर सतयुग जयंती होगी और फिर जरूर लक्ष्मी नारायण जयंती भी होगी। यानी दैवी जयंती, दैवी राज्य, स्वराज्य की जयंती होगी। पर राज्य, पर कहते हैं रावण को, पर कहते हैं तमो प्रधान प्रकृति को, स्व कहते हैं आत्मा को, आत्मा के राज्य की जयंती। क्योंकि वो स्वर्ग का हेवनली गॉड फादर है, तो हेवन में तो राज्य स्थापन करने के लिए नहीं आवेंगे। जरूर नरक में आवेंगे, फिर नरक के बाद स्वर्ग होगा, हेल में आएंगे। तो हेल एंड हेवन के बीच में आते हैं, दोनों का संगम है। तो बोलते हैं मैं हेल एंड हेवन के बीच में आता हूँ। उसको कहा जाता है कल्प का संगम युग। तो मैं आता जरूर हूँ। तो देखो गाया भी जाता है कि बरोबर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो ज्ञान की अंधेरी रात्रि में आता हूँ। जबकि सारी दुनिया में अज्ञान अंधेरी की रात्रि है, सब अज्ञान अंधेरे में है, सारी दुनिया 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधेरे में है ही। जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो भी अज्ञान अंधेरे में। बेस ज्ञान में है, एडवांस ज्ञान में है, वो भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। तो अब ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि जानते हो इस समय ब्राह्मणों की संघ में भी दुनिया में शूटिंग हो रही है, पूरे कल्प की शूटिंग हो रही है। बेहद के नाटक के चारों सीन की शूटिंग हो रही है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, रजो प्रधान द्वापर और कलयुग तमो प्रधान की शूटिंग हो रही है। तमो प्रधान अर्थात रात्रि। इस बात को तुम बच्चे समझ सकते हो और तुमको नंबरवार धारणा भी हो सकती है। ताकि औरों को भी धारणा करा सको, जो अच्छी तरह धारणा करते हैं वो दूसरों को भी अच्छी तरह कराते हैं। दिल पर भी तो वो ही चढ़ते होंगे ना जो सर्विस करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार की सर्विस होती है। फिर जैसी जैसी सर्विस है इतना ही दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस तो सब करेंगे ही जरूर, कुछ न कुछ तो सर्विस करते हैं ना। कोई सफाई करेंगे, कोई भंडारा चढ़ाएंगे, कोई क्या काम, कोई ऑलराउंडर वर्कर्स भी होते हैं तो वो सब करते हैं। कोई आवे तो उनको ज्ञान भी समझाते हैं। कोई भी आवे रोटी भी पका कर देते हैं। कोई भी आवे पानी भी देते हैं। सब प्रकार की फुल सर्विस कर देते हैं। उनको कहते हैं ऑलराउंडर। तो सूक्ष्म भी सर्विस, मूल भी यानी थर्ड वर्ल्ड रीड, इसको कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। तो उनको कहा जाता है सभी सर्विस में ऑलराउंडर। जो भी सर्विस सामने आती है तो सभी सर्विस सीखनी चाहिए, क्योंकि भोजन बनाना भी सीखना चाहिए, फिर उसमें तो बर्तन मांजना भी पड़े, सब कुछ करना पड़े। इसको कहा जाता है स्थूल सर्विस, अपने लिए भी और फिर दूसरों के लिए भी। ये स्थूल सर्विस भी है ना। और सर्विस में जब यहाँ ईश्वर है तो ईश्वर की याद में सब सर्विस करनी पड़ेगी। ईश्वरीय सेवा है ना, तो ईश्वर की याद तो फास्ट होनी चाहिए। वो जब उसको याद करते रहे तब भी कर्म विनाश हो, तभी बाप आकर के समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को अकर्म कर्म और विकर्म का ज्ञान सुनाता हूँ, सुनाता हूँ कि इस समय में सब आसुरी संप्रदाय है, तो कर्म विकर्म ही बन जाते हैं। जब सतयुग होता है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्म की स्थिति में रहते हैं, देवान की स्थिति में रहते हैं तो विकर्म हो जाते हैं। वहां सतयुग में रावण राजी तो है नहीं, और यहाँ का वर्षा वहां मिला हुआ है, वहां तुम सभी आपस में रहते ही हो, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न था राजा रानी तथा प्रजा होते, उसमें कभी भी कोई एक दूसरे को दुख नहीं दे सकते हैं। परंतु भक्ति मार्ग वाले शास्त्र में तो सभी दुखी दुख दिखलाई दिए है, क्यों दिखलाई दिए है? कहाँ की यादगार दिखला दी है शास्त्र में? सत्युग त्रेता की, संगम युग की याद दिखला दी है। ये बाप आकर के समझाते हैं कि देखो उन शास्त्रवादियों ने जो शास्त्र ड्रामा के अनुसार फिर बनते हैं, परंतु ये तो समझाया गया ये शास्त्र बनते ही है भक्ति मार्ग के लिए, जिससे फिर सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। बरोबर देखा जाता है कि जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर सीढ़ी उतरनी पड़ती है, क्योंकि 84 जन्म तो लेना ही पड़ता है, जरूर उतरते हैं तो उतरती कला ही कहा जाता है। इस समय संगम युग में कहा जाता है चढ़ती कला, तो सबकी चढ़ती कला होती है ना। देखो अभी संगम में है साग की चढ़ती कला, इस समय में सबकी उतरती कला हो रही है, क्यों? क्योंकि आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है। बरोबर इस समय में सभी हैं ही नरकवासी, तो जरूर उतरती कला हो पड़ी, और फिर जब चढ़ती कला है तो सब जाते हैं स्वर्ग में या तो शांति धाम में। तो देखो सबकी 500-700 करोड़ की भी चढ़ती कला हुई ना, सबकी चढ़ती कला मनस आपको दुख से छुड़ाए लेते हैं। इसलिए बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। अभी तुमको तो यही नशा है कि हम इस समय में ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं, पीछे जा करके हम दैवी टाइप के बन करके सुख देखेंगे, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां तुमको ये नशा है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। और लायक किसको कहा जाता है? लायक उनको कहा जाता है जो औरों को भी वर्षा लेने के लायक बनावे। पीछे कोई राजा ही पद पावे, कोई क्या पद पावे, कि तो बाप ने समझाया है कि पढ़ने वाले तो बहुत ही आएंगे। फिर ऐसे नहीं है कि सब कोई 84 जन्म लेंगे, नहीं, पढ़ने सब आएंगे, पीछे जो थोड़ा पढ़ेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा तो देरी से आते रहेंगे, तो जरूर 84 जन्म सब थोड़े ही लेंगे। कौन लेंगे? मन सब धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, या सब धर्मों में कन्वर्ट होने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, सिर्फ है जो सूर्यवंशी है वही 84 जन्म लेते हैं। 18.366 की वाणी का 5वां पेज। तो फिर कोई 82 जन्म लेंगे, कोई 80 जन्म लेंगे, जा करके देखो आधा कल्प तक ये देवी देवता ही रहते हैं, आधा कल्प तो बहुत आते रहेंगे। तो वो पीछे आते रहेंगे, उनके लिए थोड़े ही है कि 84 जन्म लेंगे। आते रहते हैं, आते रहते हैं, जो बिल्कुल ही लास्ट में वो आकर के पिछाड़ी में त्रेता के अंत में जन्म लेगा। उनको भी तो कहेंगे ना, भाई स्वर्ग में आए, क्योंकि त्रेता के बाद तो फिर पीछे बाम मार्ग आ जाता है। उस समय तो पीछे स्वर्ग से लेकर उतरना शुरू होता जाता है। ये सभी नॉलेज बुद्धि में रखना चाहिए ना, और ये समझाना होता है। ये नॉलेज तो तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता, इसलिए भारतवासियों को पहले ही कह देते हैं कि भारतवासी तो पहले आए थे। कहाँ के वासी? मतलब जो भारत में सतयुग में आकर के 82 जन्म लेते हैं, कम जन्म लेते हैं, वो भारतवासी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भारत है, भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, उस भारत की मत में मिलकर के नहीं रहते हैं। एक हो के नहीं रहते हैं, विरोधाभास पैदा कर देते हैं। कोई दूसरे की मत पर चल पड़ते हैं तो दूसरे के दिल में बस गए ना। फिर भारतवासी कहें या विदेशी कहें, विदेशी रहे, तो 84 जन्म तो भारतवासियों ने ही पूरा किया है। जो सदा भारत में ही वास करते हैं, कैसे पूरा किया, इसको समझाने के लिए ये सीढ़ी बनाई हुई है। देखो ये राजाई है, पीछे यथा राजा रानी तथा प्रजा हम रहते थे। ये सीढ़ी समझने की बहुत अच्छी है। किनके लिए? विदेशियों के लिए नहीं, ये सीढ़ी है खास भारतवासियों के लिए। वो भी सीढ़ी है जैसे वो जो चक्र है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये भी सीढ़ी है। इस सीढ़ी उतरने की सहज समझ में आ जाती है। वो चक्र ड्रामा के रूप में है, ये 84 की सीढ़ी कैसे उतरती है, ये भी बड़ी अच्छी समझाने में आती है। और वो समझाने के अक्षर भी लिखे हुए हैं जो बच्चों को समझाने में सहज हो भी, कि ऐसे भारत जो बिल्कुल ही संपूर्ण था, वो कैसे ऐसे 84 का पूरा करके बिल्कुल पतित बन जाता है। फिर आ करके बाप ऊंचते ऊंच बनाते हैं। तो जब बाप आते हैं तभी सभी का कल्याण हो जाता है, क्योंकि बाप खुद ही कल्याणकारी है। कल्याणकारी कहा जाता है ना, तो सबका कल्याण करेगा या कोई का कल्याण करेगा? सबका कल्याण करते हैं। और जिस युग में आते हैं उस युग को भी कल्याणकारी युग कहा जाता है, आस्पीशियस युग कहा जाता है। बाप को भी कहा जाता है कल्याणकारी बाप, क्योंकि सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। देखने में भी आता है, बरोबर बुद्धि कहती है, सचयुग में जब इनका राज्य था सभी का कल्याण था, कोई भी दुखी नहीं था, बाकी सभी आत्माएं बाद में आती। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में जो सुनते हो सो धारण करनी चाहिए ना, और धारण करके औरों को भी अच्छी तरह समझाना पड़े। क्योंकि ये समझाना तो है कि वास्तव में हम सब फैमिली टाइप के हैं, जरूर है ईश्वर की फैमिली है। तो भगवान तो सबका बाप है, कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे गाया जाता है। सो भी ये यहाँ भारत में गाया जाता है, वहां विदेशों में तो सिर्फ फादर कहा जाता है, वहां कोई मदर एंड फादर नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मदर एंड फादर आते हैं, क्योंकि यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, माँ बाप मिलते हैं, उन लोगों को माँ बाप नहीं मिलते हैं, इसलिए फादर को याद करते हैं। और जब फादर क्रिएटर है तो जरूर मदर तो होगी ना, बिना मदर कैसे क्रिएट करेंगे, मदर बिगर क्रिएशन कैसे हो सकती है। तो ये बातें उनको मालूम नहीं है, ये फादर है, क्रिएटर है, हेवनली गॉड फादर। कैसे हेवन स्थापन करते हैं वो तो न भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले जानते हैं। तो इस समय में तुम जानते हो, तो बरोबर कैसे फादर आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, पीछे गाया हुआ तो है कि ब्रह्मा के तन से स्थापना करते हैं, और शंकर से विनाश करते हैं, ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा का तन कहाँ रहा, तो स्थापना करते हैं का क्या मतलब हुआ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं और जो पवित्र ब्राह्मण नहीं बनते हैं शंकर द्वारा विनाश करते हैं, तो स्थापना और विनाश तो होता ही है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, तो जरूर कहेंगे कि कलयुग के अंत का, ये कलह युग का, पुरानी दुनिया का विनाश और नए सतयुग की स्थापना। तो ये स्थापना जरूर संगम युग पर आकर करेंगे, तो देखो तुम बच्चे संगम युग पर हो, ईश्वरीय संप्रदाय भी हो, फैमिली भी हो, और कल्प के संगम युग पर भी हो, और बाप भी कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूं, और तुम आकर के फैमिली टाइप बने हो, यानी मम्मा बाबा को या माता पिता को याद करते रहते हो, तो भी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, दो को नहीं याद करना। क्या कहा है, नहीं, एक को याद करना होता है। तो क्या मतलब हुआ है? नहीं, एक ही पर्सनालिटी में दोनों समाये हुए हैं। एक ही व्यक्तित्व है जिसे भारतवासी अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर माने वो नारी भी है और नर भी है, दोनों कंबाइंड हैं। तो संगम युग में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंबाइंड है? है क्या? माता पिता कंबाइंड, बाप दादा कौन कंबाइंड है? बाप और दादा, ये कंबाइंड पार्ट दिखाते हैं शंकर का। जगत पिता भी है और जगत की माता चंद्रमा के रूप में भी दिखाई गई है, ब्रह्मा। तो एक को याद करना होता है। मेरे को तुम्हें याद करने से, क्योंकि तुम आत्माओं को भी याद करना है परमात्मा को। गाया जाता है आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अच्छा, फिर कहाँ सुंदर मेला? जरूर यही कहेंगे ना, क्योंकि शिव बाबा परमात्मा यही आते हैं। तो उसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला, जबकि बाप फिर आ करके सबको अपना परिचय देते हैं, अपने घर का भी परिचय देते हैं, शांति व मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। उसमें भी कहा जाता है सबको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, सबको जीवन मुक्ति का दान देते हैं, क्योंकि फिर सब इस जीवन मुक्ति से, जीवन बंध से छूट जाते हैं। सभी शांति धाम में, मुक्ति धाम में तो जाएंगे ही, फिर आएंगे तो भी पहले पहले ये सतोपदान होते हैं। देखो, पहले पहले जब धर्म स्थापक वाले भी आते हैं तो उस समय थोड़े मनुष्य रहते हैं उस धर्म के, उसको कम से कम आधा समय तो जरूर चाहिए। जो उनकी आदमशुमारी बढ़े, जब बहुत आदमशुमारी बढ़ जावे तब राजा स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ करे। तीन छियासठ की वाणी का छठा पेज। तो जब चल करके बढ़े उस समय तो कोई झगड़ा मारामारी उनके पास नहीं होगा ना? नहीं, जब बढ़े आधा हो जाए, सतो प्रधान और सतो से पास हो जाएं, रजो में आएं, इतनी जब उनकी संस्था हो जाए तब फिर वो लड़ाई झगड़ा मारामारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर उनका भी उतरना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उतरते तो हैं, परंतु पीछे उतरना बहुत होता है। तो पहले उनके लिए भी देखो सुख है, और यहां पहले पहले तुमको सुख है, पीछे देखो दुख है पिछाड़ी में। तो देखो अभी वो सभी फिर भी कुछ ठीक हैं, और ये देवी देवता सनातन धर्म वाले तो एकदम दुखी हैं बरोबर। क्यों है? है? क्यों दुखी हैं? क्यों तमो प्रधान है? क्योंकि ये पहले आए और वो बाद में आते हैं, तो बाद में दुखी तमो प्रधान बनते हैं, क्योंकि इस समय में सभी जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं और सबका विनाश तो होने का ही है, सब तैयारियां हो रही हैं, कोई नई बात तो हुई नहीं है, क्योंकि ये कलयुग पुरानी दुनिया, उसके बाद तो नई दुनिया आनी है, जरूर आनी है, और नई दुनिया में राज्य है ही देवी देवताओं का। तो बाप आते हैं, आकर के ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया है, जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती है। वही ब्रह्मा की सोल कोई माता में प्रवेश करके जब कार्य करती है तो उस माता की पूजा होती है, जगदम्बा जगत की माता, वो भी ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां। तो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, देखते आते हैं भाई ये विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, तो जो जो पुरुषार्थ करते हैं, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, वो विष्णुपुरी में आकर के अपना अच्छे पुरुषार्थ का प्रारब्ध पाते हैं। अब ये भी समझने की तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, विष्णु को कितने हाथ होते हैं? चार हाथ दिखाए गए, और ब्रह्मा को कितने मुख दिखाए जाते हैं? पांच मुख भी दिखाए जाते हैं, चौमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है। और ब्रह्मा से क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। कोई ब्रह्मा ऊपर की भुजा का विष्णु बनता है या विष्णु का सहयोगी बनता है, कोई ब्रह्मा का पद पाने वाले नीची भुजाओं का पद पाने वाले बनते हैं, कोई दाई ओर के कोई बाई ओर के। तो ये समझने की तो बात है ना। कोई सरस्वती के फॉलोअर, चक्र दिखाते हैं, कोई ब्रह्म समाजी ब्रह्मा के फॉलोअर, कोई लक्ष्मी के फॉलोअर, शंख दिखाते हैं, कोई जगदम्बा के फॉलोअर। गर्ग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए पुरुषार्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस समय में तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को, क्यों? तुम बच्चे इन चार सहयोगी भुजाओं में से क्या पसंद करते हो? किसके फॉलोअर बनना पसंद करते हैं? क्या कमल फूल? जगदम्बा को फॉलो करना पसंद करते हैं। जगदम्बा जो अंतिम जन्म में महाकाली बनती है, नारायण को फॉलो करने वाले। नारायण तो है ही नहीं चार भुजाओं में। जो है नारायण तो वो सतयुग का नारायण बनेगा या संगम युग का नरसे नारायण बनेगा? हैं? तो जो भुजा को गदा दिखाई गई है वो कौन से ब्रह्मा का सूचक है? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा ही, कृष्ण की आत्मा सतयुग में जाकर के कृष्ण बनेगी। संगम युग में तो पद नहीं पाएगी। तो बाबा ने बोला तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। अब खुशी कहां से होगी? खुशी की बात ही नहीं पता है, हैं? खुशी तो तब होगी जब खुशी की बड़ी बात पता हो। तो पता है? हैं? पता ही नहीं तो खुशी कहां से बड़ी हो जाएगी, हैं? बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम बच्चे जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है पांचवा मुख, वो ऊपर रहता है या चार भुजाओं के साथ है? हाँ, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर पूछा खुशी काहे की, ये भी तो बताओ। बड़ी खुशी है तो बताओ। तो इस समय में हम ईश्वर से भविष्य की जन्म का वर्षा पाए रहे हैं, ब्रह्मा की सोल इस समय संगम युग में या उनके फॉलोअर्स संगम युग में ईश्वर से प्रैक्टिकल वर्षा पाए रहे हैं। ओम राधे सरस्वती के जो फॉलोअर्स हुए वो इस समय प्रैक्टिकल में वर्षा पाए रहे हैं। कि नहीं पाए रहे। तुम तो पाए रहे हो, 21 जन्मों का वर्षा। अभी जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, जितना तुम एक्यूरेट अपन को बनाएंगे पुरुषार्थ में, वो घड़ियां भी होती हैं। एक होती है लीवर घड़ी और दूसरी होती है उसे क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो वो एक्यूरेट होती है और वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये बच्चे भी ऐसे ही हैं। देखो उनमें कई बच्चे तो बहुत एक्यूरेट जाते हैं पुरुषार्थ में, और कई पुरुषार्थ में इनएक्यूरेट हो जाते हैं। तो फिर उनकी वैल्यू कम हो जाती है और उनको पद भी कम मिलता है। जो लीवर अच्छा चढ़ता है उनको अच्छा पद मिलता है। तो लीवर बनना चाहिए ना, तो अच्छा चलना चाहिए ना, एक्यूरेट चलना चाहिए पुरुषार्थ करके। अभी सब एक्यूरेट नहीं चल सकेंगे। ये तो बाबा ने शुरुआत में ही समझाया था, जो एक्यूरेट नहीं चल सकेंगे वो यहां वहां लून पानी होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। और पांडव लड़ाई करते हैं, पांडव तो लड़ाई करते ही नहीं। जो यहां वहां होते रहेंगे, लून पानी होते रहेंगे, वो भले कई तो अच्छी तरह से एक दो का खाना खराब भी करते होंगे, वो बात भी समझ में आती है। ऐसे नहीं है कि नहीं देखने में आता है, समझ में आ जाता है। और जो किसका खाना आबाद न करते होंगे तो खराब तो जरूर करते होंगे, क्योंकि उनमें ज्ञान पूरा है नहीं, योग है नहीं, उनकी तकदीर में ही नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है। क्योंकि तदबीर कराने वाला तो आता है, सबको एक जैसी तदबीर करना सिखाता है बरोबर, परंतु देखा जाता है तदबीर कराने वाला तो एक ही है, लेकिन तकदीर बनाने वाले पुरुषार्थ में कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कम प्रारब्ध पाते हैं। बाकी बाप आते हैं तो पुरुषार्थ तो सबको एक जैसा कराते हैं ना। फिर वो श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न खत्म करने के कारण योग में पूरा नहीं रह सकते। तो ये सब योग की बात है। अगर योग में अच्छी तरह से रहें तो धारणा भी अच्छी हो और बहुतों को तीर भी अच्छा लगे। क्योंकि जिनका योग अच्छा होगा उनका तीर अच्छा होगा, योग नहीं होगा ज्ञान होगा तो उनको इतना पूरा तीर नहीं लगेगा। क्योंकि वो जैसे पंडित बन जाते हैं, पंडित को तो आजकल हम कहते हैं जो आसुरी पंडित है ना, वो तो दुर्गति को प्राप्त कराते हैं। तो उनसे तो भले कुछ अच्छे ही हैं, परंतु योगी बच्चों का दिखाई देता है कि कम है, इसलिए शिव बाबा की तरफ इतना लव नहीं है। लव होवे तो उनकी सर्विस करे, परंतु लव न होने के कारण, योग में न होने के कारण फिर धारणा भी कम होती है और उनकी एक्टिविटी भी सुधरती नहीं है, सर्विस में नहीं लगते हैं, खुशी नहीं रहती है। जैसे कोई मुर्दे होते हैं ना, उनकी शिकल ही जैसे मुर्दों की, क्योंकि तुम्हारे फीचर्स आकर के देवताओं जैसे सदैव हर्षित रहने चाहिए, क्योंकि ये साजन या बाप कहो तुमको मिला हुआ है, इतना मिला हुआ है जो तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। तो तुम बच्चों को देखो, कोई भी साहूकार के घर में कोई गरीब जाए, बच्चा गोद लेते हैं ना साहूकार, तो बच्चे को कितनी खुशी हो जाएगी। वो आंख खानी होती है ना जब साहूकार कोई गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उनकी कितनी खुशी होती है। तो देखो, तुम भी अभी आसुरी संप्रदाय के थे, बहुत गरीब थे, कभी बाप ने आकर के अपनी गोद में लिया है, अडॉप्ट किया है तुम बच्चों को, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। वाह, कहां हम वो आसुरी संप्रदाय के थे, कहां अभी हम ईश्वरी संप्रदाय के बने। अठारह 366 की वाणी का सातवां थे। तुम बच्चों को खुशी तो अपार होनी चाहिए, परंतु अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो क्या किया जाए। जैसे वो आख्यानी सुनाते हैं, राजा जाकर के खेरूद की लड़की को ले आया, तो वो लड़की मुट्ठी को अकल ही नहीं था, मुट्ठी को श्रृंगार कराया तो वो श्रृंगार ही नहीं कर रही थी। तो है ना यहाँ की बात, क्योंकि आसुरी संप्रदाय के माना ही एक पाई पैसे वाले हैं, आते तो हैं बरोबर पटरानी बनने के लिए। जैसे शास्त्रों में है, परंतु लायक ही नहीं होगी तो फिर उनको क्या कहेंगे। तो देखो, कई वापस जाकर के फिर वो चले जाते हैं, उस आसुरी संप्रदाय में भी जाते हैं। बात तो यहाँ अच्छी तरह से श्रृंगार न होने के कारण पद भी भ्रष्ट होता है, प्रजा में चले जाते हैं, पटरानी तो बनती नहीं है। नहीं तो बाप आते हैं पटरानी बनाने के लिए। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कि भाई बगाते थे पटरानी बनाने के लिए, तो ये बगाते कहां से हैं? अरे ये रावण की राजधानी से भगाते हैं और क्या करते हैं, राम के राज्य में ले जाते हैं। भगाना सगाना ये जो सब लिखा हुआ है वो अयथार्थ लिखा हुआ है, तुक्का लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टार्टनबुल स्टोरीज, फालतू गपोड़े। ये गपोड़े है ना, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है ये गंदा गपोड़ा, पीछे गीता का भगवान कृष्ण है दूसरा गंदा गपोड़ा। तो देखो वो जो गपोड़ शंख होते हैं ना, इनको कोई शंख नहीं मिला हुआ है सिवाय गपोड़ा मारने के। शंख तो देखो तुमको मिला हुआ है। देखो ईश्वरीय जो विष्णु है उनको शंख मिला हुआ है, तो वो शास्त्रों में तो साफ गपोड़े हैं। ईश्वर की आसुरी मत पर ये गपोड़े, और वो भी शंखोधनी करते करते तो है ना, ये शंखोधनी करे, ईश्वर सर्वव्यापी है। देखो ये भी तो शंखोधनी है ना, ये गपोड़े हैं। तुम कहते हो नहीं ईश्वर तो सबका बाप है, उनसे वर्षा मिल रहा है। वर्षा जिस बाप से मिलता है वो सर्वव्यापी होता है क्या? तो तुम्हारा है राइटियस गपोड़ा और शास्त्रों में है अनराइटियस गपोड़े। तो बाप बैठ करके युक्ति से ये सभी पॉइंट्स बुद्धि में धारण कराते हैं कि किसको भी तुम समझा सकते हो कि देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हुए, और प्रजापिता ब्रह्मा का बाप तो शिव है। एक ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों है बाप शिव के बच्चे। कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव, कोई त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव है। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा ये भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। जो भारत नरक है उनको स्वर्ग बनाते, शंकर द्वारा इस भारत को नरक को फिर विनाश कराते हैं। विनाश कराते हैं तो सबका विनाश हो जाता है, समझा ना। जो यहाँ बचते हैं सो भी तो भारत में ही बचते हैं। कभी प्रलय तो होती ही नहीं है, तो देखो ये भी जैसे प्रलय हो जाती है ना, कितने 550 करोड़ हैं और कहां देखो थोड़े मनुष्य भारत में होंगे। बाकी क्या होंगे? यहाँ रात दिन का फर्क हुआ। तो ये भी जब किसको समझावे कि जब इनका राज्य था तब कुछ ख्याल करो कितने मनुष्य होंगे सतयुग में। किनका राज्य था, कितना मनुष्य होंगे? इनका राज्य था, किसकी तरफ इशारा किया? कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की तरफ जब इशारा किया तो कितने मनुष्य होंगे? 9 लाख। फिर तो ख्याल करो कितने मनुष्य होंगे सत्युग में। बाकी जो इतने 550 करोड़ वो कहां गए? तो जरूर वो मुक्ति धाम में गए होंगे। किसने ये खेल ऐसा रचाया जो आकर के सब खलास हो गए? वो ही तो पतित पावन गॉडफादर का काम है। आकर के स्थापना करते हैं और बाकी का विनाश कर देते हैं, मुक्ति धाम में चले जाते हैं। तो समझानी भी सहज आ जाती है, समझाना वो जरा बुद्धि का काम है। योग पूरा न होने के कारण योग भटकता है ना। एक तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो ये जो सभी तुम्हारा देह के साथ संबंध है ये सारा मिट जाएगा। देवान रहेगा तो सब याद आते रहेंगे, यही पुराने संबंध के मामा मासा मासी चाचा काकी, भले उनको छोड़ा भी है और यहाँ आकर के बैठे भी हैं, तो भी वो उनमें बुद्धि चली जाती है। बुद्धि जाती है तो बाप कहेंगे वाह हमारा बन करके भी तुम नष्ट हुआ नहीं होते हो, फिर भी अपने मित्र संबंधियों को फलाने को याद करते रहते हो, तो फिर वो हमारे कैसे बनेंगे? उनको कहा जाता है व्यभिचारी याद। बाप कहते हैं याद करना चाहिए सिर्फ मुझे, और याद करते हैं अपने मित्र संबंधियों को वहां। इसको भी कहा जाता है व्यभिचारी याद होने के कारण इतनी सदगति को पाए नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं? क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। बाप कहते हैं दुर्गति वालों को याद ही न करो, भले उनके साथ रहे पड़े हो वहां, परंतु उनमें इतना याद मत करो। क्योंकि तुम कहते हो ना हम बाप का बाबा हम आपका हो गए बस, फिर बाहर को ऐसे ही जैसे साक्षी होकर के देखते हो कि हाँ ये जो देखते हैं ये तो सभी मृत्यु को पाए जाने वाले हैं, मृत्यु को पाए लेंगे कि जो आसुरी दुनिया है इनको देख करके हम क्या करना है। बुद्धि में ये सारा ज्ञान आया तो हुआ है ना। अच्छा ओम शांति।